भूतल श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिन नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरव से नमः तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी हरि श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भवति सोयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपथम् वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तों हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय एवं दुर्मंत्रिभिः कंसः सह सम्मन्त्र्या दुर्मतिः ब्रह्महिंसां हितं मेने कालपाशावृतः असुरः एवं दुर्मन्त्रिभिः कंसः सह सम्मन्त्र दुर्मतिः ब्रह्महिंसां हितं मेने कालपाशावृतोऽसुरः
Sri Prabhupada,
Sri
Siddhartha,
Devam,
Sita,
Durvam,
Nidhem,
Apribhoyam,
Yodhya,
जय श्रील प्रभुपाद। कई दिन पंच के मंत्रियों के साथ बैठे, अब सुखदेव गोस्वामी कमेंट देते हैं। पंच के दुर्मंत्रियों की बात सुन करके पंच पर क्या असर हुआ, इसको सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। श्री शुक उवाच। एवं दुर्मंत्र भी कौन सा सह संबंध दुर्मंत्र। कंस स्वयं दुर्मति था, उसकी बुद्धि बहुत खराब थी और उसने मंत्रणा किया दुर्मंत्रियों के साथ। दुर्मति ने दुर्मंत्रियों के साथ बात किया, तब उसकी मति में क्या हो गया, ब्रह्म हिंसा हितम में ब्राह्मणों की हत्या करने में उसने अपना हित समझा, क्योंकि काल पाशा उतो सुरा वो जमराज के पास में बंधा हुआ था, अर्थात तो मरने वाला था। उसकी आसन्न मृत्यु थी, बहुत बड़े अथॉरिटी श्रीमद भागवतम के बोल रहे हैं, एवं दुर्मंत भी कंस सह सम्मंत दुर्मति। इस प्रकार अपने दुर्मंत भी अपने खराब मंत्रियों की बात को सुना, उस सम्मंत्र उनके साथ मंत्रणा किया और कंस के मन में बात बैठ गई कि हमारा वास्तविक हित है ब्राह्मणों की हत्या करने में है। देखिए ये बात यहाँ विचारणीय है, वही कंस जो अंबिका के वचन से, माता दुर्गा के वचन से बहुत बदल गया था, देवकी वसुदेव को कारागृह से मुक्त कर दिया और देवकी से उसके पुत्रों को पुत्रों के मरने का अफसोस व्यक्त कर रहा था कि हाय बहन मैं बहुत पापी हूँ, मैं अपने ही भांजों को मार दिया, मुझमें सौहार्द नहीं रहा, क्षमध्वन ममदौर आत्म। फिर वसुदेव जी से वो कहता है जीजा जी आप हमारे अपराध को क्षमा कीजिए, आप दोनों दयालु हैं, आप में कभी क्रोध नहीं देखा गया, क्षमा मांग रहा था, इतना बदल गया था, लेकिन मंत्रियों को बुलाया स्वयं और उनके साथ मंत्रणा किया। मंत्रणा करने पर उसकी बुद्धि में यह बात बैठ गई, ब्रह्म हिंसा हितम मैंने, ब्राह्मणों की हिंसा करना, उनका दमन करना, इसी में मेरा भलाई, इसी में मेरी भलाई है। एक बार छह पुत्रों के मरने का पश्चाताप कर रहा था देवकी वसुदेव से, वही कंस फिर सैकड़ों हजारों बच्चों की हत्या करने के लिए तैयार हो गया। और सबसे ज़्यादा ये मान लिया कि मेरी भलाई ब्राह्मणों की हत्या करने में है, उनका दमन करने में है। बहुत बदल गया, माता दुर्गा की बात से उसे ज्ञान हुआ, अपने पाप कर्म पर पश्चाताप किया और फिर दूषित मंत्रियों के संग मंत्रणा करके वह यह मान लिया कि बच्चों की हत्या करनी है, ब्राह्मणों की हत्या करनी है, गौओं की हत्या करनी है, इसी में मेरी भलाई है। इसलिए इस श्लोक में शिक्षा दी गई है सुखदेव गोस्वामी द्वारा कि कभी भी किसी स्थिति में दुसंग नहीं करना चाहिए, कुसंग नहीं करना चाहिए। एक बहुत बड़े विद्वान कवि कहते हैं कि माया काल दिशा विशाल विषय प्रधान विध्वंसक प्रारब्धादुदितो जदिंद्रिय चलो दीपो विवेकात्मक। यह संसार माया के द्वारा रचा गया है। यहाँ सभी मनुष्य देवता भूले हुए हैं। ये माया की निशा है, रात्र है, माया काल निशा। और वो भी काल निशा, काल निशा का अर्थ है काली रात, काली रात है, घना अंधकार छाया हुआ है। अंधकार क्या है? विषय, भ्रांत, विषयों का अंधकार है। एक तो अज्ञान छाया है और उस पर भी विषय का बहुत प्रलोभन है। इस संसार में सब जगह बहुत प्रलोभन है। हम लोग रोड पर पढ़ते हैं, आप आइए हम आपको भोग देंगे, अच्छा घर देंगे, अच्छा भोजन देंगे। सब जगह एडवर्टाइजमेंट है। तो ऐसे अज्ञान तो छाया ही है, माया की काली निशा छाई है और विषयों का अंधकार उसके अंदर है। काली रात है, इसको ऐसे समझना चाहिए जैसे अमावस्या की रात। उस रात में भी घना अंधकार छाया है। जीव इसको समझ नहीं पाते हैं। ध्वान छाया है। यदि कदाचित भगवान की कृपा से या अपने माता पिता आदि गुरुजनों के शुभकर्म से या अपने कर्म से, शुभ कर्म से, प्रारब्ध अपने प्रारब्ध से यदि विवेक का दीपक जलता है हृदय में, विवेक का दीपक ये समझ में आ जाए किसी को कि ये असत जगत है, यहाँ पर जो भोग हैं वे अनित्य हैं, दुखद हैं, वास्तव में भगवान की भक्ति सार है। प्रारब्ध उदितो, प्रारब्धाद उदितो जदिंद्रिय चरो, यदि यह ज्ञान अपने हृदय में आता है, इंद्रिय उस वह ज्ञान अपने अन्य इंद्रियों में भी प्रकाशित हो, तो ऐसे ज्ञान को बहुत जत्न करके, बहुत उपाय करके बचाना चाहिए। इसको रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ज्ञान दीपक कहे हैं। ये बहुत नाजुक है, थोड़े से हवा से बुझ सकता है। यह दीपक भगवान की कृपा से मिलता है, कभी कभी हृदय में उदित होता है, जलता है। रक्षो सावति जप नत सुमति ना। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह इस ज्ञान दीपक की रक्षा करें। किससे? दुसंगति के वायु से, पवन के झोंका से रक्षा करें, अन्यथा ये बूझ जाएगा ये दीपक दुसंगति के पवन से तुरंत बूझ जाएगा और जलाना फिर बड़ा कठिन होगा। किसी भी इंद्रिय द्वारा ये ज्ञान बुझ सकता है। झोंका लगने से हवा का, दूषण का, परांच खानी व्यस्त स्वयं भू। ब्रह्मा जी ने इंद्रियों को बाहर बाहर की ओर खोला है, दरवाजा बाहर की ओर है, आँख बाहर की ओर देखती है, नासिका बाहर की गंध लेती है, कान बाहर का शब्द सुनता है। तो दरवाजा इंद्रियों का बाहर की तरफ खुला हुआ है, भीतर की तरफ नहीं। अपने हृदय में परमात्मा का निवास है, भगवान कृष्ण का निवास है, इसको देखने की कोई गुंजाइश नहीं है। जब इंद्रियों का द्वार बाहर की तरफ है तो बाहर के विषयों को ही ग्रहण करेंगे। तो बहुत मुश्किल से, सौभाग्य से, यदि ये समझ में आ जाए कि भगवान की भक्ति सार है या ज्ञान दीपक है, तो इसकी रक्षा करनी चाहिए बहुत प्रयास करके। दुसंगति के स्पर्श वायु के झोंका से, दुसंगति का अर्थ है मायाबद्ध मनुष्य के बात को नहीं सुनना। बात और बात, बात का अर्थ है वचन और बात का अर्थ होता है हवा। एक किसी की बात को हम सुनते हैं तो वो बातें अधिकांशतः संसार में उलझाने वाली होती हैं। अतः बहुत जत्न करके अपने को बचाना है, ज्ञान दीपक को कायम रखने के लिए, जिससे प्रकाश देता रहे। ज्ञान होना कठिन नहीं है, थोड़ा भी थोड़े शब्दों में भी ज्ञान हो जाता है, लेकिन उसकी रक्षा करना ये मुख्य है। कभी कोई दुसंग में पड़ जाए तो अपने को बचाना चाहिए। कभी ऐसे लोग मिलेंगे दुसंग कुसंग वाले, वो कहेंगे क्या हर एक साल जाते हो वृंदावन, क्या मिला? अरे अपना काम धंधा देखो, अपना बिजनेस देखो, ये फालतू काम क्यों करते हो? हर एक साल परिक्रमा में जाते हो, क्या मिला? कहीं ऐसे कुमंत्रियों की बात सुन करके मन में आ गया कि ठीक है अब बहुत किया, इस साल नहीं जाएंगे, ज्ञान दीपक बुझ जाएगा। बहुत मुश्किल से ज्ञान दीपक जलता है भगवान की कृपा से। मन में बात आती है कि हमको भगवान की भक्ति करनी है, वृंदावन जाना है, मायापुर जाना है, परंतु इस ज्ञान को बुझते देर नहीं लगती, क्योंकि संसार में सब जगह असत संग छाया है, असत बातें, असत विचार, असत खान पान। तो असत संग से बचना है। भगवान चैतन्य महाप्रभु सबसे पहले यही शिक्षा दिए, असत संग त्याग यही वैष्णव आचार। सनातन गोस्वामी ने पूछा कि सबसे पहली शिक्षा दीजिए हम, क्या जरूरी है? भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं असत संग त्याग, असत संग छोड़ दो, यही वैष्णव आचार, यही वैष्णव का आचार है। सत्संग की बात में नहीं कहे पहले, पहले कहे असत्संग त्याग। तब सनातन भूषण ने पूछा असत कौन है? असत, तब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं स्त्री संगी एक असाधु कृष्णा भक्त आर। स्त्रियों में असक्त रहने वाला व्यक्ति एक कोटि का असाधु है, असत। दूसरा असत है कृष्णा भक्त, कृष्ण का अभक्त, तो कृष्ण का भक्त नहीं है जो वैष्णव नहीं है, वो दूसरे कोटि का असाधु है। तो असत संग के ये दो विभाग किए भगवान चैतन्य महाप्रभु, स्त्री संगी और कृष्णा भक्त, कृष्ण का अभक्त। दोष से बचना चाहिए। स्त्री को भगवान चैतन्य महाप्रभु ने बहुत बंधन कारक नहीं माना। स्त्री संगी, स्त्री में अटैच रहने वाला, आसक्त रहने वाला, स्त्री के संग होना, विवाह करके रहना नियम पूर्वक, यह कोई गलत नहीं है। गलत है स्त्री में आसक्त हो जाना या स्त्री का पुरुष में आसक्त हो जाना, यह गलत है। हमेशा स्त्री के साथ ही बात करने की आदत हो जाए, उसका चिंतन हो, उसके साथ खान पान सभी कुछ हो, यह आसक्ति का लक्षण है। यदि स्त्री है, अपनी पत्नी है घर में, और वह भगवान की आरती करती है, पूजा करती है, घर द्वार साफ रखती है, पति के प्रसन्नता के लिए भोजन बनाती है। तो यह बंधन नहीं है, बंधन है स्त्री में अति आसक्त हो जाना। सबसे ज़्यादा जरूरी है सावधान होने की कृष्ण भक्त कृष्ण के अभक्तों से। जो हमेशा संसार की वार्ता करते हैं, धन की चर्चा करते हैं, यह बिजनेस करो इसमें फायदा होगा, यह करना चाहिए ये करना चाहिए, यह नहीं करना चाहिए, ये वार्ता होती ही रहती है। कोई बहिर्मुख जन कभी ये वार्ता नहीं करेगा कि बहुत दिन बीत गया, बहुत वर्ष बीत गया आयु का, अब मन को एकाग्र करो, कृष्ण में लगाओ, तो बहुत कमाल लिया, बच्चे वगैरह पढ़ लिख गए, घर बना लिया, अब मन को हटा लो संसार से, अब विष्णु में लगाओ। और अगर शक्ति नहीं है तो फिर भी भगवान का भगवान के नाम की माला जपो, भगवान को मंदिर में प्रणाम किया करो, अथवा भगवान को ही अपने घर में रह करके उनके अर्चा की पूजा करो। इस प्रकार की बात कहने वाला नहीं मिलेगा, अतः अपनी रक्षा स्वयं करनी है। सत्संग तो चारों तरफ है, सारा संसार भरा हुआ है, पर अपने को बचा करके रखना है। असत संग त्याग एहि वैष्णव आचार, असत संग छोड़ना यही वैष्णव का आचार है। उसके बाद आता है सत्संग, भगवान के भक्तों का संग करना। सत्संग का यही अर्थ है, भगवान के भक्तों का संग। श्रीमद् भागवतों में पढ़ते हैं, भगवान शिक्षा दे रहे हैं उद्धव जी को। एक बहुत बड़े राजर्षि थे जिनका नाम पुरुरवा था, वे सोम वंश में हुए। राजा पुरुरवा बहुत अशक्त थे, अपनी पत्नी में, और उनकी पत्नी खास उर्वशी थी। वो अपने आप आई थी इनके पास, कुछ बात किया महाराज ने, उसने कहा कि ऐसी कौन स्त्री है जो आपकी भुजाओं में आप नहीं आएगी और आपका आलिंगन नहीं चाहती है। उसने व्यक्त किया कि महाराज मैं आपके विषय में बहुत सुनी हूँ, आप परम वीर हैं, परम दानी हैं, अतः मैं आपको अपना पति बनाना चाहती हूँ। तो राजा पुरुरवा स्वीकार कर लिया, अपने आप स्वर्ग से आई हुई अप्सरा श्रेष्ठ प्रार्थना कर रही है, तो उसको उन्होंने ठुकराया नहीं, स्वीकार कर दिया। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। पर उसने दो शर्त रखा, एक कि ये भेड़ के बच्चे हैं दो छोटे छोटे, इनकी रक्षा कीजिएगा, और कभी मेरे सामने नग्न मत रहिएगा, मैं आपको नग्न नहीं देखना चाहती। तो कुछ काल के बाद इंद्र ने देखा कि वशी के बिना स्वर्ग सुना है, जब पता लगाए कहाँ गई है, तो पता लग गया कि वो महाराज पुरुवा के साथ रह रहे हैं। तब उन्होंने गंधर्वों को भेजा, गंधर्व जा करके रात्रि में भेड़ के बच्चों को हर लिए। भेड़ के बच्चे मैं करके चिल्ला रहे थे, इसको सुन करके उर्वशी कहने लगी अपने पति से, पुरुवा महाराज से, तुम नपुंसक हो, तुम हमारे दोनों बच्चों की रक्षा नहीं कर पाए। इस आक्षेप को सुन करके राजा पुरुवा तलवार लेकर के दौड़े, तलवार लेकर के दौड़े, उनको होश नहीं रहा कि मैं नग्न हूँ। तो गंधर्व लोग चमकने लगे, या कोई टॉर्च लाइट लिए होंगे, वो लोग जला दिए। उर्वशी ने देख लिया कि ये नग्न है, उसके बाद जाने लगी। राजा पुरुवा पीछे पीछे चले, कहने लगा कि मैं मर जाऊंगा, तुम और दिन रुको। तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता। तो उर्वशी कहते हैं, महाराज आप मत मरिए, देखिए आप पुरुष हैं, धैर्य रखिए। ये स्वयं भगवान कथा कहे हैं एकादश स्वयं। वो शिक्षा देती है, ये इंद्रियां वास्तव में वृक हैं, ये भेड़िए हैं, आपको खा जाएंगे, आप इंद्रियों के चक्कर में मत पड़िए। बहुत शिक्षा दी है, लेकिन महाराज पुरुवा पागल की तरह घूमते रहे संसार में, और हा उर्वशी कहते हैं। वही पुरुवा महाराज जब कथा सुने महाराज अम्बरीश की, अम्बरीश सूर्य वंश में हुए थे चक्रवर्ती सम्राट, और राजा पुरुवा चंद्र वंश में थे। उन्होंने अम्बरीश महाराज की कथा को सुन करके ज्ञान प्राप्त किया, और उर्वशी लोग को छोड़ करके, बाद में उर्वशी लोग गए थे, अपने आप उनको वैराग हो गया। उर्वशी लोग छोड़ करके फिर भगवान की भक्ति करते हुए, नाम जप करते हुए घूमने लगे, कभी चिंता नहीं करते थे, चिंतन भी नहीं होता था उर्वशी का, आत्मा राम हो गए, भगवान में रमने लगे। कथा का ऐसा असर होता है। भक्त चरित को सुनने का ये फल है। अम्बरीश महाराज की कथा सुनकर तो उनको वैराग हो गया, उर्वशी से उर्वशी को छोड़ दिए और भगवान की भक्ति में रम गए। तो मैं ये कथा इसलिए कह रहा हूँ कि प्रयत्न करके असत्संग छोड़ना चाहिए। इस संसार में असत विषय सब भरे हुए हैं, इंद्रियों का भोग सब जगह है, सब समय है। तो अपने को सावधान करना है, सब समय भगवान की चर्चा करनी चाहिए, भगवान का नाम कीर्तन जप पदगान और भगवान के अर्चा विग्रह का दर्शन। इससे हमारा कल्याण होगा। निराश नहीं होना चाहिए कि हम माया जगत में हैं। माया जगत में हैं लेकिन यहीं पर भगवान का नाम है, यहीं विग्रह है। विश्वास रखिए श्री विग्रह के रूप में साक्षात भगवान है। और कई पुण्य क्षेत्र है जैसे वृंदावन, यहाँ आने से संपर्क होगा भगवान का, भगवान के भक्तों का दर्शन होता है। ऐसे अनेक क्षेत्र हैं, बहुत ही पवित्र क्षेत्र जहाँ भगवान के अर्चा विग्रह हैं, प्रतिष्ठित हैं। जैसे जगन्नाथपुरी में भगवान विराजते हैं अर्चा विग्रह के रूप में, काष्ठ की मूर्ति है और जब दो आषाढ़ लगता है तब भगवान का कलेवर भी बदलता है, नौ कलेवर। इस तरह से भगवान के अर्चा विग्रह को हम रख सकते हैं अपने घर में, पवित्र घर में। घर में बहुत साफ सुथरा रखना चाहिए घर को, और घर के किसी कक्ष में श्री विग्रह को रखना चाहिए। यदि घर में भगवान हैं तो वहाँ लक्ष्मी जी तो अपने आप आ जाती है। समृद्धि रहेगी और पूजा में कोई कठिनाई नहीं है। कहीं से फूल लेकर के भगवान को अर्पण करना, अगरबत्ती लेकर के भगवान को सुगंध देना, चंदन से तिलक लगाना और जो भगवान ने दिया है शुद्ध है, सात्विक आहार देना भगवान को, खिलाना पिलाना, नैवेद्य अर्पित करना। और मंदिर में इससे ज़्यादा क्या है, भगवान का श्रृंगार, भगवान को प्रसाद खिलाना और समय से सुलाना पिलाना, जगाना, यही है। तो अपने घर में भी रह करके यह अभ्यास किया जा सकता है। ये बात है कि घर पर ज़्यादा लोग नहीं आते हैं, साधु संग नहीं होता है, लेकिन नियम पालन तो सब हो सकता है। मंगला आरती में भगवान की आरती कर सकते हैं, और कोई ना हो तो महामंत्र का जप कर सकते हैं ठाकुर जी के सामने। इस तरह से इसको यत्न कहते हैं। यत्नाग्रह बिना भक्ति ना जन्माए, यत्न और आग्रह के बिना भक्ति करने पर वो प्रेम नहीं उत्पन्न करती है। यत्न करना चाहिए आग्रह पूर्वक। कैसा आग्रह? जैसे जातक पक्षी हट करता है आग्रह। गोस्वामी तुलसीदास जी कहे हैं, बहुत उपाध्याय शिक्षा है, भली भारत भूमि शरीर भलो, नहीं भली भारत भूमि भलो कुल जन्म शरीर समाज भलो रही कहे, करुषा तज के परुषा बरसा हिम मारित घाम सदा सही कहे। जो भजे भगवान शयान सोई, तुलसी हठ चातक ज्यो गही कहे, न तो और समय विष बीज बहे, हर हाटक काम दुखा नहीं कहे। बहुत बड़े वैष्णव गोस्वामी तुलसीदास जी थे, काशी में रहते थे, वे लिखे हैं कि भली भारत भूमि शरीर भलो, भारत वर्ष में जन्म मिलना बहुत अच्छा है। जिनको जन्म मिला है सोचना चाहिए भली भारत भूमि, भारत में जन्म हुआ है, और भलो कुल जन्म और कुल भी अच्छा मिला है। सनातन धर्म के फॉलोअर कुल में जन्म हुआ, ये बहुत अच्छा है। भारतवर्ष में जन्म होना और वो भी अच्छे कुल में, वो कुल यदि व्यभिचारी ना हो शराबी ना हो तो और अच्छा है। भले कुल जन्म शरीर समाज भलो रही करे, शरीर अच्छा मिला और समाज भक्ति में मिला, अच्छा शरीर निरोग शरीर, जो शरीर विकलांग नहीं है, ऐसा शरीर मिला भगवान की दया से। और समाज भी बहुत अच्छा मिला, समाज हत्यारों का नहीं है, आतंकवादियों का समाज नहीं। सबसे अच्छा समाज तो ये स्कान है, अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति महामंडल। तो शरीर अच्छा मिला, समाज अच्छा मिला, और क्या करना है? करुषा तज कै परुषा बरसा हिम मारित घाम सदा सही। क्रोध को छोड़ देना चाहिए, कठोर वचन को नहीं बोलना चाहिए, किसी के प्रति क्रोध नहीं करना और कठोर वचन नहीं बोलना। और बरसा हिम ठंडा घाम, गर्मी का दिन हिम बर्फ सहना, ठंडा का समय अभी तुरंत कार्तिक प्रारंभ होगा और कार्तिक से ठंडा पड़ने लगता है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि हिमारुत घाम सदा सही है, शीत आंधी वर्षा घाम सब सहते हुए जो भजे भगवान शयान से, जो भगवान की भक्ति करता है वही चतुर है। सदा सही कह कैसे भजता है तुलसी चातक ज्यों गहि कह, तुलसी हट चातक ज्यों गहि कह, चातक की तरह हठ पकड़ ले भजन करने का। जैसे चातक हमेशा डरता रहता है आकाश की तरफ देख करके, अपने मेघ की तरफ पी पी डरता रहता है, चातक का यह हठ है वो बादल से ही मांगता है। कभी सरोवर का पानी या नदी का पानी, समुद्र का पानी नहीं पीता है, इतना जल भरा रहता है, कहीं पानी नहीं पीता है, प्यास से तड़पता रहता है। पर बादल की तरफ मेघ की तरफ देख करके वो पी पी डटता रहता है। यह हम लोगों ने प्रत्यक्ष देखा है चातक किस तरह से डटता है, उसको पपीहा कहते हैं। पपीहा डरता रहता है और बादल कभी वर्षा करता है कभी नहीं भी करता है। वो भी खास करके स्वाति नक्षत्र में जल चाहता है, पर रखता रहता है सालों भर, चाहे पानी बरसे या न बरसे, बादल हुए या न हो, लेकिन वो यही आशा रखता है कि मेघ हमको देगा अवश्य वर्षा होगी, और उसकी निष्ठा के अनुसार वर्षा होती भी है जरूर स्वाति में। और एक बूंद पानी पी करके बस सालों भर जीवन भर रहता है, पर रटता रहता है। ऐसे ही हम लोगों को रटना है कृष्ण दर्शन दे या न दे, उनकी जो मर्जी हो करें, लेकिन अपना काम है ये रटने का। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण
हरे राम 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 हरे।
और संसार में जो भी भोग हैं वो सरोवर की तरह है, इसकी तरफ देखना नहीं है। चातक किसी बड़े सरोवर को देख करके उसमें पानी नहीं पीता है, या तो गंगा जी में भी गंगा जी का पानी भी नहीं पीता है। एक दोहा में तुलसीदास जी कहते हैं कि चातक उड़ता हुआ जा रहा था आकाश में और अकस्मात तो बहुत थक गया, थक करके गिरा, संजोग से एक नदी में गिर गया, वो गंगा जी थी। तो मरते समय भी चातक ये सोच रहा है कि मैं अपने प्रियतम का जल पीऊंगा मेघ। वो अपने चोंच को उठा लिया, उसको पता लगा कि ये गंगा का जल है, तो अपने चोंच को उठा लिया, तो मरते समय भी गंगा जी का पानी नहीं पिया। इस तरह की निष्ठा होनी चाहिए। भोगों की मैं बात कर रहा हूँ, संसार में बहुत भोग हैं, बहुत खाने की चीज़ें हैं, देखने की चीज़ें हैं, सुनने की चीज़ें हैं, लेकिन चातक की तरह हाथ पकड़ कर करके रहना चाहिए। और मर गए चातक लेकिन गंगा जी का पानी नहीं पिया। अन्य नदी या सरोवर की तो बात ही क्या है। तो ऐसे हट करके भगवान की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि बहुत दुर्लभ साज मिला है, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। भगवान ने कृपा किया, भारतवर्ष में जन्म मिला और भी बहुत अच्छे कुल में, अच्छा शरीर मिला, अच्छा समाज मिला, तो भजन करना चाहिए। भजन में ही सार्थकता है इस देह की या इस भूमि की। भगवान का नाम जपते रहेंगे, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। और यदि भारतवर्ष में जन्म लेकर के अच्छे कुल में और स्वस्थ शरीर में रहकर भी, अच्छे समाज में रहकर भी यदि भगवान की भक्ति नहीं किए, तो सोने का हल मिला, सोने के हल में कम धेनु नाद करके विष का बीज बोए। यदि किसी को सोने का हल प्राप्त हो जाए तो खेती करने की उसको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन यदि सोने का हल मिले और उस पर उसमें जोतने के लिए काम धेनु मिल जाए, जो इच्छा के अनुसार सब फल देता है, तो उस व्यक्ति को हल जोतने की क्या जरूरत है। और सब मिल जाए, सोने का हल मिले, काम धेनु बैल या गाय भी मिले, उसको ले करके हल चलाना चालू करे और मूर्खता बस बीज क्या बोए, बीस बीस का बीज बोए। एक बार राधा रमन महाराज कथा कह रहे थे अकलाव में, गुजरात में, इन्होंने बहुत अच्छी व्याख्या किया था कि भगवान के द्वारा जो कुछ मिलना चाहिए, जो भी एसेट मिलना चाहिए, तो सब मिल गया। कोई शिकायत नहीं कर सकते कि भगवान ने हमको ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, सब कुछ दिया। भारतवर्ष में जन्म मिला, अच्छा कुल मिला, अच्छा समाज मिला, अच्छा शरीर मिला, लेकिन फिर भी भक्ति नहीं कर रहे हैं तो विष का बीज बो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कलाव में सही में विष का बीज बो रहे हैं। सब जगह तंबाकू की खेती होती है, तंबाकू विष ही है। लेकिन ये सिद्धांत है, भगवान की भक्ति के अलावा और काम सब विष बना है, विष का बीज बोएंगे। और विष का बीज बोएंगे तो अंत में मिलेगा क्या, विष मिलेगा। तो सबसे बड़ी बुद्धिमानी यही है कि ये शरीर पा करके और भी भारतवर्ष में अच्छा समाज पा करके भगवान की भक्ति करनी है, और फिर ऐसा समाज कहाँ मिला, ऐसा शरीर और ऐसा देश, ये सब मिला हुआ है केवल इसीलिए कि हम जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाए, मोक्ष प्राप्त करें, भगवान के धाम में चले जाए। सारी सुविधा भगवान ने दिया है, तो इस सुविधा का उपयोग करना चाहिए। और इस प्रकार से दुर्लभ जन्म पाकर के फिर भी हम सांसारिक काम धंधा में रह गए, केवल पैसा कमाने की चिंता में रह गए, घर गृहस्थी को ठीक करने के फेरे में चले गए, तो ये कोई लाभ नहीं है। असली लाभ है कि भगवान की भक्ति में लग गए, भगवान के नाम जप में लग गए, भगवान को प्रणाम करने में, भगवान की बातें सुनने के लिए समय है। यदि भगवान की कथाओं को पढ़ते हैं सुनते हैं तब तो लाभ है, असली लाभ, अन्यथा सब बेकार हो गए। इस भूमि में जन्म लेने का ये बहुत बड़ा लाभ है, भगवान की भक्ति। फिर भी कुछ हतभाग्य लोग यही अभिलाषा करते हैं, प्लान बनाते रहते हैं कि हम विदेश चले जाएं। किस लिए? अधिक पैसा कमाने के लिए। तो पैसा क्या करेगा? केवल वासना कामना पैदा करेगा, हमारा हित नहीं कर पाएगा। तो संतोष करके अपने देश में रहना चाहिए, यहाँ बहुत सुविधा है भगवान की भक्ति करने की, चाहे साउथ इंडिया हो चाहे नॉर्थ हो, सब जगह भक्ति करने की सुविधा है। भगवान ने इस भूमि को ऐसा बनाया है सब जगह भक्त लोग कार्तिक व्रत करते हैं, सब जगह उपवास करते हैं, कीर्तन करते हैं, केवल वृंदावन में ही नहीं, सब जगह। इसलिए संतोष करके अपना काम करना चाहिए। हम जिस काम के लिए भेजे गए भगवान के द्वारा, वो काम कर लेना चाहिए। वो है जन्म मृत्यु से पार हो जाना, भगवान के धाम को प्राप्त करना। इस लक्ष्य को ध्यान में रखना चाहिए, लक्ष्य हमें भूलना नहीं चाहिए। और इसी जीवन में, इसी शरीर से हमें साधन करना है, भगवान की भक्ति करनी है। जैसा शरीर भगवान ने दिया है उसी से करना है। जब तक बोलने की शक्ति है बोलना चाहिए, स्मरण की शक्ति है स्मरण करना चाहिए। एक दिन ऐसा समय आएगा कि बोलना भी नहीं जाएगा, देखने की शक्ति नहीं रहेगी। पर यदि हम अपना कार्य कर चुके हैं, शरीर से जो करना चाहिए वो कर चुके हैं, तो अफसोस नहीं होगा। शरीर तो जाएगा ही, इसको बचा कर तो नहीं रख सकते। यही भगवान का विधान है। पर जो काम इस शरीर से करना है वो कर लेना चाहिए। अधिक से अधिक भगवान का नाम जपना है, इस शरीर से दर्शन करना है भगवान का, भक्तों का दर्शन करना है और सत्संग करना चाहिए, भक्तों का संग, भक्तों की सेवा। स्वल्प मत्स धर्म हताए ते महत्व भय, थोड़ी भी भक्तों की सेवा करें तो महान भय से हमारी रक्षा हो जाएगी। पर ये एटीट्यूड रहना चाहिए कि हमें सेवा करनी है, और सेवा चाहे एक पैसे से हो वो बहुत महत्वपूर्ण है। श्रद्धा से सेवा करनी चाहिए, भक्तों को खिलाना पिलाना, उनके बैठने की सोने की व्यवस्था करना, यही हमारा काम है, यही करना चाहिए। अपने काम को पूरा करके हम जब जाएंगे तब भगवान भी हमारा अप्रिसिएशन करेंगे। मुख्य बात आज का है कि हमें असत्संग से बचाना है अपने को। इस भावना के विरुद्ध कुछ सुनना नहीं है। जैसे कंस अपने को बचा नहीं पाया और सुना मंत्रियों की बात, तो वैष्णवों की हिंसा करने का विचार किया, ब्राह्मणों की हिंसा। कितना परिवर्तन हो गया, केवल मंत्रियों की बात से उसका चित्त बदल गया। और ब्रह्म हिंसा भीतम मैंने, उसने मन में निश्चय कर लिया कि बस इसी में हमारा हित है, वैष्णवों को दुख देना, ब्राह्मणों की हत्या करना, बस इसी में हमारा सुख, गाय का वध करना, ये सब सुनने का परिणाम हुआ। तो सत्संग का अर्थ है बहिर्मुख लोगों से कुछ सुनना, इसलिए इसे सावधान रहना चाहिए। हमें सब समय भगवान की बातें सुननी है। श्रील प्रभुपाद की कृपा से अनेक पुस्तकें हैं, जैसे कृष्ण बुक है, श्रीमद् भागवतम है, श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज, सुशील के संपर्क में रहना है। और इस जीवन में हमें टास्क को पूरा करना है, साधन पूरा करना है। वास्तव में परम साधन तो भगवान की कृपा है, कृपा से ही वे मिलेंगे, परंतु भगवान चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि कोई भक्त हमारे लिए कितना परिश्रम कर रहा है। परिश्रम से भगवान नहीं मिलते हैं, मिलते हैं अपनी कृपा से, पर वे परिश्रम से खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। इसी वृंदावन की कथा है। एक बार गोपों की कुमारियां, गोप कुमारियां व्रत कर रही थी, कात्यायनी देवी की पूजा, माता दुर्गा की पूजा, ये मनोरथ रह करके कृष्ण हमें पति के रूप में मिले, और मंत्र भी जपती थी, कात्यायनी महामाये महायोगिन निधेश्वरी नंद गोप सुतन देवी पति मे कुते नमः पूजा कर रही थी। पूजा के लिए और कोई साधन नहीं था, माता की मूर्ति बनाती थी जमुना के तट पर, बालू से मूर्ति बनाती थी, और अनेक उपहार अर्पित करती थी, अनेक फूल फल अर्पित करती थी। एक महीना तक उन कुमारियों ने पूजा किया, ठंडे पानी में स्नान करते थे अगहन के महीने में, जबकि बहुत शीत होती है। वे जग जाती थी सवेरे और अन्य सब सखियों के साथ मिलती हुई गाती हुई जाती थी, कृष्ण का नाम कीर्तन करते थे, कीर्तन करती हुई जाती थी, और गांव के सब लोग देखते थे कि बच्चियां जा रही। एक महीने तक व्रत किया है, इस तरह से स्नान और कात्यायनी माता की पूजा। अगहन पूर्णिमा आ गया, व्रत का अंतिम दिन, तो कात्यायनी देवी की पूजा से प्रसन्न हो गए भगवान। वे स्वयं अपने दो चार सखाओं के साथ गए जमुना के तट पर, जहाँ कुमारियां व्रत की थी। प्रसन्न हो गए और उस दिन कुमारियों ने स्नान किया, स्नान में अपने अपने वस्त्र को तट पर रख करके नदी में अवगाहन करने लगे। एक दिन रोज नग्न स्नान नहीं करते थे, उसी दिन भगवान आए, और अपने सखाओं से संकेत किए, इन कुमारियों के सभी वस्त्र को इकट्ठा करो और हमको दो। वे सब बच्चे इकट्ठा किए कुमारियों के वस्त्र को, और भगवान उसको ले करके कदम वृक्ष पर चढ़ गए, एक शाखा पर बैठ करके भगवान चिल्ला हंसने लगे। गोप कुमारियों ने देखा, स्वयं प्रियतम आ गए, जिनके लिए व्रत कर रही थी वही आ गए। भगवान ने कहा, हे कुमारियों, तुम व्रत करके बहुत दुबली हो गई हो, आओ अपने वस्त्र को ले जाओ। तो वे वस्त्र लेने के बदले और जल डूबने लगी अपने आंगों को छिपा करके। भगवान ने कहा कि यहाँ आओ और हाथ जोड़ करके क्षमा मांगो वरुण देवता से। तुम लोगों ने नग्न स्नान किया है, ये नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। तो छोटी छोटी बच्चियाँ थी, फिर भी भगवान ने कहा नग्न स्नान अपराध है, अपराध का मार्जन करने के लिए हाथ जोड़ करके प्रणाम करो। तो उन कुमारियों ने हाथ जोड़ करके सीधे भगवान को प्रणाम किया और आई और भगवान उनके वस्त्र को दे दिए। वे पहचान करके अपना अपना वस्त्र ले दिए। मेरे कहने का आशय यह है कि भगवान कुमारियों के व्रत प्रसन्न हो गए। फिर कुमारियां खड़ी थी वस्त्र पहन करके, तो भगवान से कुछ सुनना चाहती थी अपने मनोरथ पूर्ति के विषय में। तो श्री भगवान ने कहा कि आगामी शरद काल की चांदनी रात में इसी जमुना के पुलिंग पर तुम्हारे मनोरथ की पूर्ति होगी। भगवान ने मनोरथ पूर्ण किया, रास विहार किया। जितनी ब्रज में कुमारियां थी सबका मनोरथ पूर्ण किया, सबको प्रियतम के रूप में मिले। तो भगवान मिलते हैं व्रत करने से, परिश्रम करने से वे प्रसन्न हो जाते हैं। जय श्री प्रभुपाद।